श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद 24 अध्याय श्लोक संख्या 61। ऐसे इसके पीछे भी श्लोक है, इस पर तात्पर्य है, इसलिए इस श्लोक को यहाँ लिखा गया है। तो इसी का अभ्यास करेंगे हम लोग।
क्वचि सोचत जाया मनु, क्वचि सोचत जायायम अनुसोचत दीनवत अनुहृष्यत हृषंत्याम मुदिता मनुमोदते।
पढ़िए। अच्छा, बोर्ड पर दूसरा है। संतान लिखा हुआ है जी, ठीक है।
क्वचित पिबंत्या पिबते मदिराम मद बिहवला, अस्नंत्याम क्वचिद अस्नाते जक्षत्याम सह जक्षते। क्वचित कभी कभी, पिबंत्याम पीते हुए, पिबते वह पीता था, मदिराम शराब, मद बिहवला उन्मत्त, अस्नंत्याम जब वह खातित।
बोलिए।
क्वचित कभी अस्नाते खाता था, जक्षत्याम जब चबाती थी, सहा उसके साथ, जक्षति वह चबाता था। क्वचित कभी गायते गाता था, गायंत्याम अपने पति के गाने पर, रुदत्याम जब वह रोती, रुदती वह भी रोता था। क्वचित कभी हसंत्याम जब हंसती थी, हंसती वह हंसता था। जलपंत्याम जब वह अनाप शनाप बोलती थी, अनु उसके साथ साथ, जलपति वह बोलता था। क्वचित कभी धावते वह दौड़ता था, धावंत्याम जब वह दौड़ती थी, तिष्ठंत्याम उसके शांत खड़े रहने पर, अनु इसके साथ ही साथ, तिष्ठते खड़ा रहता था। अनु उसके साथ, सेते सोता था, सयानम जब वह सोचता था, आस्ते वह भी बैठता था। क्वचित कभी आसितम जब वह बैठती थी, क्वचित श्रुणोति कभी सुनता था, श्रृणवंत्या जब वह सुनने में व्यस्त होती थी, पश्यंत्याम जब वह कुछ देखती थी, अनु उसके साथ, पश्यति वह भी देखता था, क्वचित कभी जिग्रते सूंघता था, जिग्रंत्याम जब उसकी पत्नी सूंघती होती, स्पर्शंत्याम जब वह सुख कुछ स्पर्श करते, स्पृशते वह भी छूता था, क्वचित उस समय, क्वचित कभी कभी सोचते जब वह विलाप करती, जायाम उसकी पत्नी अनु उसके साथ, सोचते वह भी विलाप करता, दीनवत दीन व्यक्ति की तरह, अनु उसके साथ, हृष्यते प्रसन्न होता था, हृषंत्याम जब वह प्रसन्न होते, मुदिताम जब वह संतुष्ट होते, अनु उसके साथ, मोदते उसे भी संतोष होता। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब रानी मद्यपान करती तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता, जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता, जब वह चबाती तो वह भी साथ साथ चबाता, जब रानी गाती होती तो राजा भी गाता, इस प्रकार जब रानी रोती वह रोता, और जब वह रानी हंसती तो वह भी हंसता, जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वह भी उसी तरह बोलता करता, और जब रानी चलती तो उसके पीछे हो लेता, जब रानी शांत भाव से खड़ी होती तो वह भी खड़ा रहता, और जब रानी बिस्तर में लेट जाती तो वह भी लेट जाता, जब रानी बैठती तो वह भी बैठ जाता, और जब रानी कुछ सोचती तो वह भी वही सुनता, जब रानी कोई वस्तु देखती तो वह भी उसी को देखता, और जब रानी कुछ सूंघती तो राजा भी उसी को सूंघने लगता, जब रानी कुछ छूती तो राजा भी उसे छूता था, और जब उसकी प्रिया रानी शोक मग्न होती तो वह बेचारा राजा भी शोक में उसका साथ देता, इसी तरह रानी को जब सुख मिलता उसका भोग राजा भी करता, और जब रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा भी तुष्टि का अनुभव करता। इस श्लोक में स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम को दिखाया गया है, आसक्ति को, किस तरह से व्यक्ति स्त्री में आसक्त होता है तो उसका अनुगमन करता है। लेकिन आज भगवान जगन्नाथ जी अपने महल में जाएंगे, तो मेरी इच्छा है कि मैं उनके विषय में कुछ, आधा घंटा टाइम है, आप लोगों की इच्छा है तो, कैसे जगन्नाथ जी इस रूप में आए, सुभद्रा बलराम जी और कृष्ण जगन्नाथ जी। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रह रहे थे अपनी पटरानियों के साथ में, तो उनको ब्रज की बहुत याद आती। वे कहते हैं रुक्मिणी मोहे ब्रज बिसरत नहीं, और रुक्मिणी जी से बात करते हैं एकांत में अपने महल में, निज महल में, कहते हैं कि हे रुक्मिणी, मुझे ब्रज की स्मृति बार बार आती है, कहाँ यह द्वारका सोने की नगरी है, मणियों से सजी हुई है, और कहाँ वह हमारा ब्रज वृंदावन, ब्रज भूमि, कहाँ वह नंद यशोदा बछड़े गाय गोप सखा गिरिराज जमुना, कहाँ कुंज निकुंज और कहाँ ये राजभवन, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है,
मुझे ब्रज की स्मृति हो रही है। इस तरह भगवान अपने पटरानियों के साथ में ब्रज का हमेशा याद करते, सोते रहते, तबे हे श्री राधे ऐसा बोलते, राधा रानी का याद करते। हे ललते, हे विशाखे, सखियों का स्मरण करते और यशोदा जी का याद करते, नंद बाबा को याद करते और उनको जो प्रिय सखा थे श्री दाम, तोष, मधुमंगल, इनको याद करते बार बार। तो भगवान की पटरानियों की, महिषियों की इच्छा हुई कि ब्रज के प्रीतम याद करते हैं तो ब्रज की ऐसी कौन सी विशेषता है, मधुरता है, उसमें गुण है, को याद करते हैं। तो हम लोग भी ब्रज की उस महिमा को सुनते, उन्होंने, उन लोगों ने इच्छा प्रकट किया ब्रज लीला सुनने के लिए। भगवान के सौंदर्य माधुर्य जो अष्टसात्विक विकार है, इस विषय में तो रोहिणी जी ब्रज में रही थी। कंस के भाई से वसुदेव जी ने रोहिणी जी को नंद बाबा के घर में सुरक्षित रख दिया। तो रोहिणी जी ब्रज में रही थी, वृंदावन में, गोकुल में, महावन में। तो भगवान की जन्म लीला से लेकर के और मथुरा गमन लीला तक उन्होंने दर्शन किया था, भगवान की बाल लीला से लेकर के और किशोर पौगंड लीला तक, तो वे ब्रज की लीला जानते थे। तो उनको ब्रज की लीला सुनाने के लिए नियुक्त किया गया, क्योंकि भगवान की ब्रज का लीला वही वर्णन कर सकता है जो उस लीला को अनुभव किया है, देखा है, सुना है, वही उसका वर्णन कर सकता है। तो रोहिणी जी को नियुक्त किया गया। तो रोहिणी जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कर सकती हूँ, लेकिन शर्त है कि कृष्ण बलराम दोनों को वहाँ उपस्थित नहीं होना चाहिए उस सभा में। तो उनको कौन रोकेगा? तो किसी रानी को तो साहस नहीं हुआ, लेकिन बहन भाई को रोक सकते हैं और उसके बात को भाई बुरा नहीं मानते हैं। तो सब लोगों ने निर्णय किया, सुभद्रा जी द्वारपाल बनकर गेट पर, दरवाजे पर रहें, खड़ी रहेंगे, बैठे रहेंगे और कोई भी पुरुष आएगा तो उसे प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसा नियुक्त करके रोहिणी जी ने भगवान की ब्रज लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया, उनकी बाल माधुरी, भगवान की बचपन की लीला, सुंदरता, चंचलता, कैसे वृंदावन के रज में लौटते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, कैसे मिट्टी खाते हैं, इन सब बाल लीलाओं का वर्णन किया, उखल बंधन लीलाओं का। और जब श्री कृष्ण वृंदावन प्रवेश किए तो वृंदावन के लीलाओं का वर्णन कर रही थी, और उसी बीच में जब भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे थे तो श्री कृष्ण बलराम आए। आए तो अपनी कथा स्वयं सुनने लगे दरवाजे पर, और सुभद्रा जी भी भगवान की ब्रज की मधुर लीला को सुन करके उनके अंगों में असात्विक विकार हो गया, और जितनी पटरानियाँ थी सब भगवान की प्रेम में सब रो रहे थे। और सुभद्रा जी भी भगवान की लीला सुन करके, उनका भी बाह्य स्थिति नहीं थी, भगवान के लीला में निमग्न हो गए थे, और स्वयं कृष्ण बलराम आए और वे भी अपनी लीला सुन करके, अपनी माधुरी देखी उपजय लोभ, भगवान को अपने सौंदर्य माधुर्य को देखकर लोभ हो गया और अपने विषय में ब्रज की मधुर लीलाओं को सुन करके श्री कृष्ण बलराम भी उनकी जो स्थिति थी बहुत रस में डूब गए। और डूबने के बाद में प्रेम का जब विकास होता है, प्रेम जब उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचता है तो उसमें विकार होते हैं, प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं। तो उसमें शरीर जो कभी फूल जाता है, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं कछुए की तरह, जैसे कछुआ कभी अंग को फैलाता है और कभी समेट लेता है, तो वैसे ही प्रेम का जब विकार होता है तो हसत रोदित ओदित उद्गायते, कभी प्रेमी हंसता है। जब भगवान की हास्यमय लीलाओं का उसे स्मृति होती है तो हंसता है। और रोदन्ते, जब भगवान के विरह की अनुभूति होती है, भगवान का उन्हें दर्शन नहीं होता है, जैसे गोपी जनों को श्री कृष्ण की लीलाओं का, श्री कृष्ण का जब दर्शन नहीं होता तो उनके दर्शन के अभाव में वे रोने लगते, तो रुदंत्याम रोने लगते, कभी हंसते कभी रो। और कभी जब ऊंच स्वर में उनके गुणों का, नामों का गुणगान करते, कीर्तन करते और लज्जा छोड़ करके, तब प्रेम के विकार हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी पागल की तरह गिर जाते हैं, कुछ बोलते हैं, प्रलाप करते हैं, प्रजल्प करते हैं। तो इस तरह से प्रेम के आठ सात्विक विकार होते हैं। तो कृष्ण बलराम जब अपनी ब्रज की मधुर लीलाओं का, ब्रज की रसमय लीलाओं का, रास लीला का जब श्रवण किए तो उनके हृदय में असात्विक विकार उत्पन्न हो गया। और सुभद्रा जी का हाथ अंदर चला गया और श्री कृष्ण का जो हाथ ऐसे सीधा आगे का हाथ दिखाई नहीं दिया, केवल जैसे कोई हाथ काट दे और चेहरा फूल गया, जैसे कुछ पांडुरोग हो जाता है, तो ऐसे ही बलराम जी की भी स्थिति हो गई। और सब रो रहे हैं, कृष्ण कथा हो रही है, कहने वाले भी रो रहे हैं, सुनने वाले भी प्रेम में मूर्छित हैं और ये स्थिति हो रही है प्रेम में। तो प्रेम की यह स्थिति है। सुखदेव गोस्वामी भी भागवत की कथा सुनाते तो सुनाते सुनाते उनको समाधि लग जाते, ब्रज लीला वर्णन करने के पहले ही उनकी समाधि लग गई। परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं और सुखदेव जी शांत हो गए। नवम स्कंद में अंतिम दो श्लोकों में ब्रज की लीला का वर्णन करके चुप हो गए, लेकिन परीक्षित महाराज को रहा नहीं गया, वे प्रश्न किए। प्रश्न करने के बाद बहुत समय के बाद उनकी बात स्थिति हुई। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीला कहते कहते उसमें तल्लीन हो जाते थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी रसिक वक्ता हैं, भक्त हैं, और भगवान ही उस रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर अपनी लीला का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के बिना भगवान की लीलाओं का वर्णन दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो स्वयं नंद नंदन स्वरूप भूत, भागवत महात्म्य श्री स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो नंद बाबा के जो पुत्र हैं कृष्ण, वही सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर के और परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपनी रूप माधुरी को देख करके मुग्ध हो जाते। तो अपनी लीला को सुन करके कृष्ण बलराम की स्थिति हो गई। इसी बीच में भगवान के परम प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी वहाँ पधारे और ये उस रूप का दर्शन किए और देख करके जब लीला का स्मरण हुआ तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यह आपके जो रूप है इस रूप की मेरी इच्छा है कि कलयुग के लोग इसका सदैव दर्शन करते रहें, ये मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। नारद जी भगवान के इच्छा सकते हैं, भगवान क्या करना चाहते हैं, उनके हृदय में क्या बात है, कौन सी लीला करना चाहते हैं, इसको नारद जी जानते हैं और जान करके उनके लीला का ये विस्तार करते हैं, उसमें सहयोग देते हैं, इच्छा सकते हैं और नारद जी जो कहते हैं भगवान उसको करते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं इस रूप का ये जो छवि अभी आपकी बनी हुई है, आप तीनों आपका बलराम जी का और सुभद्रा जी का, तो इस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि कलयुग में जो उत्पन्न होने वाले लोग हैं उनको यह रूप का दर्शन होना चाहिए। तो भगवान ने नारद जी के इच्छा से इस रूप में वे प्रकट हुए, इस दारुक ब्रह्म के रूप में। तो इंद्रदुम नाम के राजा थे तो वे भगवान नील माधव का दर्शन करना चाहते थे, नील। तो उनके दर्शन के लिए, उनको पता लगाने के लिए अपने मंत्रियों को चारों दिशाओं में भेजे पता लगाने के लिए। नीलगिरी, नीलगिरी का ही अभी नाम नीलाचल हो गया है। तो पता लगाते लगाते मुझ पता नहीं लग रहा था तो एक जो उनके मंत्री थे उस क्षेत्र में गए तो वे एक व्यक्ति के घर में ठहरे। सबर सबर न, तो उनके यहाँ रह रहे थे, सेवा कर रहे थे अच्छी तरह से। तो सबर, तो उन वो जो व्यक्ति थे वो नील माधव का पूजा करने के लिए रोज जाते थे। वो जंगल में रहते थे तो रोज जाते और जब आते पूजा करके उनकी सेवा करके तो भगवान के शरीर से इतना सुगंध निकल रहा था कि उनके वस्त्र में लग जाता शरीर में, तो उसे सुगंध निकल रहा था। तो वो जो मंत्री कुछ सुगंध आती तो पूछते ऐसा सुगंध कहाँ से आ रहा है। तो उनकी एक बेटी थी, उसके साथ में उनकी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, दोनों में आपस में प्रेम हो गया। तो उस लड़के ने कहा अपने पिताजी से कि हे पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी नील माधव का दर्शन करने के लिए। तो वो गई और नील माधव का दर्शन के करके आकर उनसे वर्णन किया मंत्री से, तो मंत्री को भी लालसा हो गई। लेकिन उनके पिताजी शर्त रखे थे कि हमारे अलावा कोई दूसरा दर्शन नहीं कर सकता है, लेकिन लड़के से उनको इतना प्रेम था अपनी बेटी से, उस लड़के ने अपने पिताजी से आग्रह किया कि आप इस मंत्री को भी दर्शन कराइए। तो बेटी के आग्रह से जो उनके पिता थे आंख बंद करके और ले गए खोल कर नहीं, क्योंकि रास्ते देख लेंगे तब प्रचार करेंगे और लोग भी जाएंगे, तो आंख में पट्टी बांध करके ले गए। लेकिन वह मंत्री बहुत बुद्धिमान थे, अपने थैले में सरसों का बीज रखे थे और उसको गिराते हुए गए और वहाँ नील माधव का दर्शन करके और वे बहुत आनंदित हुए, उनको सुख मिला। और वहाँ आश्चर्य क्या देखे, एक सरोवर था, सरोवर के तट पर एक वृक्ष था और उसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। तो पक्षी सरोवर में गिरा, कूदा, और कूदते ही वो चतुर्भुज रूप धारण करके विष्णु भगवान के रूप धारण करके और भगवान के धाम में चला गया। यह देख करके वह भी कूदने जा रहा था कि मैं भी अब यहीं से भगवान के धाम में चला जाऊं। आकाशवाणी हुई कि तुम जिस कार्य के लिए चले हो उस कार्य को पूरा करो। तो वह पता लगा करके फिर और राजा को जा करके सूचना दिया। तो राजा नील माधव के दर्शन करना चाहते थे, तो उनको स्वप्न हुआ कि हे महाराज, आप मुझे इस रूप में दर्शन नहीं कर सकते हैं, मैं आपके पास स्वयं आऊँगा दारुक ब्रह्म के रूप में और आप उनको हमारी मूर्ति बना करके और हमारी सेवा प्रारंभ कीजिएगा और उस समय आप मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान ने उनको स्वप्न में आदेश दिया और भगवान के बताए हुए आदेश के अनुसार समुद्र में काष्ठ के तीन लकड़ी बहते बहते और जहाँ जगन्नाथपुरी है वहाँ आए। तो राजा को भगवान ने आदेश दिया था तो उस लकड़ी को निकलवा करके अपने राजमहल में ले गए और भगवान ने कहा था मूर्ति बनाने के लिए। तो जितने उनके राज में बढ़ई थे, लोहार, उनको बुलाए, लेकिन कोई भी लोहार सफलता नहीं मिली उनको। उनका जो हथियार था बनाने वाला वो काम नहीं कर रहा था। तो अंत में भगवान विश्वकर्मा स्वयं आए, वृद्ध व्यक्ति के रूप में आकर के राजा से प्रार्थना किया कि आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान का मूर्ति बना सकता हूँ दारुक ब्रह्म का। तो राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मरने वाले हैं, ये क्या बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बना दूंगा, आप विश्वास कीजिए, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझको एक घर में बंद करके, दरवाज़ा बंद कर दीजिए रह करके, और मेरे खाने पीने के लिए एक महीने की सामग्री रख दीजिए, एक महीना के अंदर मैं भगवान की मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा। तो राजा तैयार हो गए और व्यवस्था कर दिए और दरवाज़ा बंद कर दिए और जो बढ़ई थे लोहार वो भगवान की मूर्ति बनाना प्रारंभ किए, चालू किए, और चालू करते करते 15 दिन हुआ तो आवाज़ आना बंद हो गई। पहले रोज कुछ न कुछ आवाज़ आती थी बनाने का, काम करने का, अचानक बंद हो गई। तो राजा को घबराहट हो गया कि कहीं वो बूढ़ा मर तो नहीं गया। उनकी रानी मना कर रही थी कि आप मत खोलिए दरवाज़ा, मत खोलिए, जो वचन आपने दिया है उसके बाद खोलिएगा। लेकिन राजा को इतना मतलब अंदर में देखने की उत्साह हुआ उनको, और अपनी पत्नी की बात नहीं माने, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान परमात्मा रूप से राजा के हृदय में हैं। तो उनको प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने प्रार्थना किया था, तो नारद जी के बात को भी सत करना है। तो भगवान ने राजा के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न की, जैसे हम लोगों को भूख लग जाती है तो व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, तो वैसे ही राजा को व्याकुलता उत्पन्न हुई और बीच में वो दरवाज़ा खोल दिए तो बढ़ई तुरंत जो अंतर्धान हो गए। और जिस रूप में नारद जी ने भगवान के उस रूप का दर्शन द्वारका में किया था, वही रूप का दर्शन राजा को जगन्नाथपुरी में हुआ, बलदेव जी के रूप में, सुभद्रा जी के रूप में और स्वयं श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में। तो वही कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा जी के रूप में कलयुग में आज भी जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं। हम कलयुग के जीवों को दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए सबको बिना भेदभाव से, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई, सबको रथ यात्रा के दिन दर्शन देते हैं। ऐसे तो नहीं प्रवेश होता है, लेकिन उस दिन भगवान सुभद्रा बलराम जी के साथ में जगन्नाथ जी विचरण करते हैं रथ पर चढ़ करके और सबको दर्शन देते हैं। तो आज उनको अपने महल में जाने का अवसर है। आज के दिन वे गुंडीचा से अपने निज जो उनका महल है, मंदिर है, उसमें जाते हैं। तो आज लौटने का दिन है। तो आज आप लोग यदि बरसाना जाएंगे तो राधा रानी लाली लाल बाहर आते हैं, उनका फूल बंगला होता है। तो आज जो रथ बनाया जाता है तो रथ के जो घोड़े होते हैं उनका मुख नंदगांव के तरफ होता है, नंदगांव के तरफ। और जिस दिन जगन्नाथ जी गुंडीचा जाते हैं उस दिन रथ का मुख बरसाने के तरफ में होता है। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की लीला है, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला करते हैं और चैतन्य महाप्रभु इस लीला का स्वादन करते हैं कुरुक्षेत्र मिलन की लीला को याद करके। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए हुए हैं और द्वारका से सभी द्वारकावासी। तो 100 वर्ष के बाद में ब्रजवासियों का श्री कृष्ण से मिलन हुआ है, राधा रानी के साथ में श्री कृष्ण की भेंट हुई है गोपियों के साथ में। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, आपका यह जो राजसी रूप है यह अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ यह हाथी घोड़ा और ये मंत्री और कहाँ वह वृंदावन, बंसीवट, जमुना, गोवर्धन, गिरिराज जी और कहाँ आपका गोप वेश। जब आप वृंदावन में गोप रूप में प्रवेश करते हैं, चलसी जज ब्रजात चारयन पशुन, जब आप पशुओं को चराने के लिए ब्रज में प्रवेश करते हैं तो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, तो आपका वह जो सुंदर चरण कमल है हे नाथ, वह सुकोमल है। तो आपका वह छवि हम लोग को देख करके मेरा मन आकर्षित होता है, इसलिए कहाँ आपका वह गोप वेश और कहाँ यह राज वेश, इसलिए आप अब वृंदावन चले। तो गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने उनकी इच्छा पूरा करने के लिए रथ पर चढ़ करके और कुरुक्षेत्र से वृंदावन आए। तो कुछ ऐसे ग्रंथों में वर्णन है कि आए तो फिर गए नहीं, यहीं रह गए। ऐसे भगवान का ब्रज में नित निवास होता है, ब्रज छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो मूल स्वरूप है वो ब्रज से बाहर नहीं जाता है। मूल रूप से श्री कृष्ण ब्रज में ही निवास करते हैं, अन्य भगवत स्वरूप में अन्य लीलाएं करते हैं। और जब ब्रज में आते हैं तो उनके अंदर सभी भगवत स्वरूप आते हैं और उनके द्वारा जैसे देखते हैं बकासुर का वध भगवान करते हैं, पूतना का वध करते हैं, वत्सासुर का वध करते हैं, धनकासुर का वध करते हैं, तो ये भगवान का काम नहीं है, स्वयं भगवान कार्य नहे भार हरण, ये असु संहार करना, पृथ्वी का भार दूर करना, धर्म की स्थापना करना, संत पुरुषों की रक्षा करना, ये वृंदावन बिहारी का कार्य नहीं है। उनका तो कार्य है लीला अनुरक्तो भगवान, जो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है नंद नंदन, वो केवल विशुद्ध लीला करते हैं, ये मार काट नहीं करते हैं।
तो उनके अंदर जो और भगवत स्वरूप आते हैं, स्वयं भगवान अवतरे जय काले आर अवतार आशी ताते मिले। जब स्वयं भगवान का अवतार होने का समय आता है तो सभी अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं और सबको लेकर के आते हैं, तो वही उनके अंदर जो होते हैं वही लोग काम करते हैं। भगवान स्वयं जो भगवान हैं यह काम नहीं करते, लीला करते हैं। तो भगवान ब्रज में केवल ब्रज की लीला करते हैं, जब ब्रज के जो श्री कृष्ण हैं। तो रथ यात्रा का यही भाव है कि जो उनके ब्रज के जो प्रेमी भक्त हैं, श्री कृष्ण को ब्रज से बाहर देखना नहीं चाहते हैं। बाह्य रूप से श्री कृष्ण गए क्योंकि मधुमंगल ने राधा रानी को श्राप दिया था गोलोक में कि जिस तरह से तुम मुझे श्राप दे रही हो, कृष्ण से बिछोह करा रही हो, तो मैं भी तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी श्री कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग होगा। तो उनके बात को सत करने के लिए भगवान ब्रज से 100 वर्ष के लिए और कुछ अधिक द्वारका मथुरा में लीला किए और ठीक 100 वर्ष के बाद में कुरुक्षेत्र में प्रथम बार ब्रजवासियों के साथ भगवान का मिलन हुआ, श्रीमती राधा रानी के साथ मिलन हुआ और गोपियों के साथ में मिलन हुआ। तो भगवान की लीला मतलब अचिंत है, जन्म कर्म चमे दिव्यम दिव्य है। हम इस तुच्छ दृष्टि से बुद्धि से भगवान की लीला को नहीं समझ सकते हैं। तो ये गोलोक में श्राप भी होता है, हम लोग सोच सकते हैं कि वहाँ श्राप तो नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान की इच्छा सबसे बड़ी है। भगवान निमित्त बना करके इस पृथ्वी पर आ करके लीला करना चाहते हैं, तो पहले अपने परिकरों को भेजते हैं और इसके बाद में पीछे आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखे हैं कि मंत्री पहले आते हैं या प्रधानमंत्री पीछे आते हैं, पहले उन लोगों को भेजते हैं। तो ऐसे भगवान करते हैं, पहले अपने परिकर को भेजेंगे, पहले अपने धाम को भेजेंगे, फिर उनके परिकर आएंगे, उनके माता पिता आएंगे, सखा लोग आएंगे, और भगवान पीछे से आते हैं और आ करके उनके साथ में लीला करते हैं। क्योंकि भगवान के लीला में सहयोग उनके भक्तों के अलावा दूसरा नहीं कर सकता है। तो जो मूल ब्रज के जो उनके नित्य परिकर हैं वही उनके नित्य लीला में सहयोग करते हैं। वो नित्य उनके साथ, एक नित्य मुक्त होते हैं, एक नित्य बद्ध होते हैं। तो जो साधन करके मुक्त होते हैं, जो जो मुक्त हैं कभी बद्ध नहीं होते हैं। तो भगवान के जो नित्य परिकर हैं वो कभी बद्ध नहीं हो सकते हैं, उनके नित्य साथ ही रहते हैं। तो वही लीला आकर के उनके साथ में करते हैं, सहयोग करते हैं। तो भगवान इस तरह से आकर के यहाँ लीला करते हैं। तो आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने महल में जाएंगे, तो इस आज शुभ अवसर पर मुझे इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को भगवान की इस लीला का श्रवण कराने की इच्छा हुई। तो हरे कृष्णा।